कमरे में अभी भी रात के सन्नाटे की लकीरें बची हुई थीं। चांदनी तो जा चुकी थी, पर उसकी हल्की सी चमक खिड़की के फ्रेम में अब भी जिद की तरह अटकी थी, जैसे वो दोनों के बीच बीती रात को छोड़ने से इनकार कर रही हो। विश्वनाथ अलमारी के सामने खड़े थे। शर्ट पहनी हुई थी, कॉलर सीधा कर लिया था, लेकिन बटन अभी खुले थे। उनकी सांसें नियमित थीं, पर चेहरे पर कोई अनकही बेचैनी साफ थी, जिसका कारण शायद ये सुबह थी या कुछ और जो वो खुद भी स्वीकारना नहीं चाहते थे। उसने पैंट की बेल्ट कस ली और तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। शामली, हल्की सी नारंगी प्रिंट की साड़ी, खुले बाल और आंखों में वही नींद और अनकहे डर का मिलाजुला रंग। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक चीज और थी, वो अटपटा अजीबपन जो एक ऐसी रात के बाद आता है जिसमें शब्द तो नहीं बोले गए पर बहुत कुछ महसूस किया गया हो। वो दरवाजे पर ही ठहरी रही। दोनों की नजरें बस एक पल को मिली, उतनी देर जितनी देर में दिल एक बार तेज धड़क उठे। फिर शामली की नज़र सीधी विश्वनाथ की शर्ट पर फिसली और फिर उससे आगे उनकी खुली शर्ट के बीच से साफ दिखते सिक्स पैक एब्स पर टिक गई। नज़र एक पल को अटक गई, जितना रोकना चाहिए था उससे ज्यादा देर तक। विश्वनाथ ने देख लिया, उसकी आंखें हल्की संकरी हुईं, ना गुस्सा ना नफरत, बस एक खतरनाक शांत तीव्रता। वो बेहद धीमी आवाज में बोला, क्या देख रही हो? शामली ने झट से नजरें हटा ली। कुछ नहीं, पर उसके चेहरे की लाली और उसके अपने तेज सांसें सब बता रही थीं। विश्वनाथ ने बटन बंद करना शुरू किया, एक दो, लेकिन जैसे ही तीसरा बटन बंद करने लगा उसने देखा बटन टूटा हुआ था। वो झुंझलाया, हल्का सा गुर्राहट जैसा भाव उसकी भौहों के बीच जमा। थत, उसने धीमे पर भारी स्वर में कहा, फिर शामली की तरफ मुड़ा, ये बटन लगा दो। शामली चौंक गई, अभी उतार दीजिए शर्ट, मैं उतारने का टाइम नहीं है, उसने ठंडी आदेशात्मक आवाज में कहा, ऐसे ही लगा दो, ऑफिस लेट हो रहा हूँ। उसके भीतर झिझक कह रही थी, रिश्ता विश्वास का नहीं था, प्यार का तो बिल्कुल नहीं, ये बस डर, मर्यादा और मजबूरी का रिश्ता था। उसने हिचकते हुए कहा, मैं ऐसे नहीं। विश्वनाथ की आवाज़ अचानक सख्त हो गई, मैंने कहा लगा दो। कमरे की हवा तंग हो गई, जैसे दीवारें भी उस आदेश की भारीपन महसूस कर रही हों। शामली धीरे से आगे बढ़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। सुई और धागा उठाए वो विश्वनाथ के बेहद पास खड़ी हो गई, इतना पास कि उसकी सांसें विश्वनाथ की खुली छाती को हल्का सा छूने लगीं। विश्वनाथ खड़ा रहा, एकदम स्थिर, उसके हाथ नीचे, शर्त हल्की सी खुली हुई और मांसपेशियां तनकर उभरी हुईं। शामली ने बटन की जगह सुई लगाई, पर हाथ कांप गया, एक हल्का सा चुभन, सुई विश्वनाथ की छाती की त्वचा को छू गई। सॉरी सॉरी, शामली घबराकर बोली। विश्वनाथ हिला भी नहीं, वो बस नीचे देखा, उस जगह को जहां सुई चुभी थी। ना दर्द ना शिकायत, पर उसकी सांसें धीमी और भारी हो गईं। फिर उसने बहुत धीमे कहा, इतना धीमे कि शब्द हवा में घुलते गए, डरती क्यों हो, इतना भी नहीं लगा। शामली की उंगलियां अब भी उसकी छाती के पास थीं, गरम, नरम और अनजाने में किसी और ही तरह से उसे छूती हुईं। उसने फिर बटन लगाने की कोशिश की, इस बार और करीब झुक गई। उसके बालों की महक साफ विश्वनाथ की गर्दन तक पहुंची, उसके बाल का एक रेशा विश्वनाथ की सीने से छू गया। उस पल विश्वनाथ की उंगलियां बिना सोचे उसके हाथ के ऊपर आ गईं, बस एक पल के लिए, लेकिन वो स्पर्श उसकी पूरी देह में एक बिजली की तरह दौड़ गया। शामली ने एक झटके में ऊपर देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, चेहरे पर घबराहट, अनचाही गर्मी और एक अजीब सी खामोशी। विश्वनाथ ने उसकी आंखों में देखा गहराई से, जैसे वो जानना चाहता हो कि उसके भीतर अभी क्या चल रहा है। फिर उसके हाथ पर अपनी पकड़ एक सेकंड, दो सेकंड और फिर धीरे से छोड़ दी, लेकिन उस एक पल ने शामली के दिल की धड़कन पूरी तरह बदल दी थी। शामली ने जल्दी से बटन लगा दिया, लेकिन जैसे ही उसने धागा खींचा शर्ट और खुल गई, सीधी उसके एब्स के नीचे तक। शामली का हाथ वहीं रुक गया, दिल जोर से धड़कने लगा। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा बिना पलक छपकाए। एक भारी, डार्क, खतरनाक खामोशी कमरे में फैल गई। फिर विश्वनाथ एक कदम और आगे झुका, इतना कि शामली की सांसें उसके होंठों से टकराने लगीं। उसने फुसफुसाकर कहा, कांप रही हो? शामली धीरे से बोली, आप पास खड़े हैं इसलिए। विश्वनाथ के होंठों पर एक महीन, बहुत हल्की पर बेहद गहरी मुस्कान आई, वही मुस्कान जो आदमी को कम, खतरा ज्यादा दिखाती है। तो दूर हो जाऊं? उसने धीमे से पूछा, पर उसके स्वर में दूर जाने का कोई इरादा नहीं था। शामली की सांस अटक गई। मतलब मैं बस, तुम बस क्या? उसने उसी भारी आवाज में कहा। शामली कुछ नहीं बोली, उसकी पलके नीचे झुक गई। विश्वनाथ ने उसकी ठुड्डी बहुत हल्के, बहुत धीरे से उठाई, बस उंगलियों की छोर से, एक सेकंड के लिए। फिर वो पीछे हट गया, इतने ही अचानक जितनी अचानक वो पास आया था। उसने शर्ट के बटन बंद किए, कॉलर सीधे किए, घड़ी पहनी और बैग उठाई। दरवाजा खोलते हुए वो ठहर गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, शामली अभी भी उसी जगह खड़ी थी, उसी धड़कन के साथ, उसी तेज सांसों में बंधी हुई। विश्वनाथ ने बहुत कम आवाज में कहा, डरो मत। एक पल रुका और फिर बहुत हल्के पर बेहद गहरे स्वर में जोड़ा, मैं उतना भी बुरा नहीं जितना दिखता हूँ। फिर वो बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ। कमरे की हवा भारी थी, लेकिन उसमें अब एक और तरह की गर्मी थी, वो जो खामोशी को भी स्पर्श बना देती है। शामली ने अपने हाथों को देखा, वे अब भी कांप रहे थे। वो दबे स्वर में खुद से बोली, ये आदमी सब कुछ बदल देता है बिना छुए। और नीचे की ओर विश्वनाथ के कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाती गई, पर उसके मन की धड़कन उतनी दूर जाने से इनकार कर रही थी। श्यामली खिड़की के पास जाकर रुक गई। हवा बाहर से बिल्कुल वैसी ही थी, ठंडी शांत, पर उसके भीतर सब गर्म उलझा और अनकहा था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि आज सुबह क्या ज्यादा भारी था, सुई का चुभना या विश्वनाथ की उंगलियों का उसके हाथ पर रुक जाना। नीचे कहीं गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई, लेकिन श्यामली की आंखें उसी जगह टिक गईं जहां अभी कुछ पल पहले वो खड़ा था। उसकी महक, उसकी गर्मी, उसकी खामोशी, सब कुछ अभी भी कमरे में मौजूद था, और शायद उसके भीतर भी।